व्यापकत्वा सिद्ध नाम के हेत्वाभास का प्रसंग चल रहा है और एक उदाहरण तो पहले दिया गया कि सश्यामः मैत्री तनयत्वात् परिदृश्यमान मैत्री तनय तोमवद्, इस तरह से आज एक दूसरा अभी उदाहरण देते हैं, कहते हैं तथा अपरः अपि व्यापकत्वा सिद्धः, कि क्या अपर भी एक व्यापकत्वा सिद्ध होता है, यथा कत्वंतरवर्तिनी हिंसा अधर्म साधनम हिंसात्वात् क्रतु बाह्य हिंसावत्, ये सब प्रसंग आप पढ़ चुके हैं पहले, केवल स्मरण कराया जा रहा है कि क्रतु अंतर्वर्तिनी हिंसा, माने हिंसा जो है अगर क्रतु अंतर्वर्तिनी हो, क्रतु माने यज्ञ में की जाने वाली अगर हिंसा हो तो अधर्म साधनम, वह अधर्म का साधन है, हिंसात्वात् क्योंकि उसमें हिंसात्व रहता है, क्रतु बाह्य हिंसावत् यज्ञ से बहिर्भूत हिंसा की तरह। यहाँ जो ये जो अनुमान वाक्य का प्रयोग किया गया है इसमें न च हिंसात्वम अधर्मे प्रयोजकम, यहाँ हिंसात्व को जो है प्रयोजक के रूप में दिखाया गया, कारण के रूप में दिखाया गया, वह सही नहीं है। न च हिंसात्वम अधर्मे प्रयोजकम, हिंसात्व जो है वह अधर्म में प्रयोजक नहीं है, माने अधर्म का कारण नहीं है। तो क्या है, किंतु निषिद्धत्वम, निषिद्धत्व ही जो है यहाँ पर प्रयोजक होता है, और जो प्रयोजक होता है वही उपाधि होती है। तो किंतु निषिद्धत्वम उपाधि इति पूर्ववत उपाधि सद्भावात्, अब उसमें जो है ना पूर्ववत, जैसे मैत्री तनयत्व में साकाद्यन्न परिणाम जो है उपाधि था, उसी तरह से यहाँ पर भी जो है हिंसात्व में निषिद्धत्व रूप उपाधि का सद्भाव है, इसलिए ये भी जो है व्यापकत्व सिद्धोयम हिंसात्व हेतु, इसलिए हिंसात्व जो हेतु है यहाँ का वो व्यापकत्व सिद्ध नाम का माना जाएगा। आगे प्रश्न उठा रहे हैं कि ननु साध्य व्यापकत्वे सति साधन अव्यापक यह सह उपाधि इति उपाधि लक्षणम, ताकि साध्य का तो व्यापक हो किंतु साधन का जो अव्यापक हो उसी का नाम है उपाधि। फिर से सुनिए, साध्य का व्यापक हो और साधन का अव्यापक जो हो उसको कहते हैं उपाधि, इति उपाधि लक्षणम, तत्र तच्च निषिद्धत्वे नास्ति, ये उपाधित्व जो है ये जो उपाधि का लक्षण है ये निषिद्धत्व में नहीं जा रहा है। तत् कथम निषिद्धत्वम उपाधि इति, तो फिर जो है निषिद्धत्व को उपाधि कैसे माना गया है इति, इति या इस तरह से प्रश्न किया गया, तो उसका जवाब देते हैं मैवम कि नहीं, ये बात सही नहीं है आपका, क्योंकि तो निषिद्धत्वे भी उपाधि लक्षण से विद्यमानत्वात्, यहाँ जो निषिद्धत्व है उसमें भी उपाधि का लक्षण विद्यमान है। कैसे विद्यमान है, तो तथा ही साध्यस्य अधर्म जनकत्वस्य व्यापकम निषिद्धत्वम, ताकि यहाँ जो है ना साध्य क्या है, साध्य अधर्म जनकत्व, क्योंकि कत्वंतरवर्तिनी हिंसा अधर्म साधनम, तो अधर्म साधनत्व जो है ये अधर्म साधनत्व अधर्म जनकत्व एक ही चीज हुई, तो अधर्म जनकत्व जो है यहाँ पर क्या है, साध्य है, उसका व्यापक जो है निषिद्धत्व है, क्योंकि जो जो निषिद्ध है वही जो है अधर्म का जनक होता है, जो निषिद्ध नहीं होता वो अधर्म का जनक नहीं होता। इस तरह से साध्य का अधर्म, साध्य जो अधर्म जनकत्व है उसका व्यापक निषिद्धत्व है, सर्वत्र अधर्मजनक क्रियायाम निषिद्धत्वस्य विद्यमानत्वात्, जितनी भी अधर्मजनक क्रियाएं हैं सब में निषिद्धत्व तो विद्यमान रहता ही है। न च यत्र यत्र हिंसात्वम तत्र तत्र अवश्यम निषिद्धत्वम, जहाँ जहाँ हिंसात्व रहता है वहाँ वहाँ अवश्य रूप से निषिद्धत्व रहता है, ये इस तरह की व्याप्ति नहीं है। कृत्वंग हिंसायाम व्यभिचारात, क्योंकि कृत्वंगवर्ती हिंसा जो होती है उसमें इसका व्यभिचार है, अर्थात कृत्वंगवर्ती हिंसा में जो है ना अधर्म का जनन नहीं होता है। तो इस तरह से यहाँ साध्य जो है अधर्म जनकत्व उसका तो व्यापक है निषिद्धत्व, और साधन जो है, साधन यहाँ पर क्या था, माने हेतु हिंसात्वात, यह जो हेतु है इसमें तो यह अव्यापक है ही, क्योंकि सारी हिंसाएं जो हैं वो अधर्म की जनक नहीं होती हैं। जैसे कत्वंगवर्ती जो हिंसा है उसमें व्यभिचार है, अर्थात कत्वंगवर्ती हिंसा हिंसा तो है किंतु वह हिंसा अधर्म का जनक नहीं है। वही का अस्ति ही कृत्वंग हिंसायाम हिंसात्वम, माने कृत्वंगवर्ती जो हिंसा है उसमें हिंसात्व तो रहता है, न च अत निषिद्धत्वम, किंतु निषिद्धत्व यहाँ पर नहीं रहता है। त तदेवम त्रिविधा सिद्धो दर्शितः। इस तरह से तीन प्रकार का जो है असिद्ध नाम का हेत्वाभास दर्शितः माने दिखाया गया। अब असिद्ध हेत्वाभास के बाद जो दूसरा हेत्वाभास है वह है विरुद्ध हेत्वाभास। तो कहते हैं कि संप्रति विरुद्ध कथ्यते माने इस समय में अब विरुद्ध नाम का हेत्वाभास कहा जा रहा है। साध्य विपर्यय व्याप्तो हेतु विरुद्ध। साध्य विपर्यय से व्याप्त जो हेतु है उस हेतु को विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। यहाँ जो साध्य विपर्यय में विपर्यय शब्द है इसका अर्थ करना है साध्याभाव व्याप्य। तो साध्य विपर्यय का अर्थ हो जाएगा साध्याभाव व्याप्य हेतु विरुद्ध। व्याप्त और व्याप्य दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। जिसको व्याप्त कहते हैं ना उसी को व्याप्य भी कहा जाता है। तो साध्य विपर्यय व्याप्त में साध्य आप जानते ही हैं जिसकी सिद्धि की जाती है। विपर्यय का अर्थ कर लेंगे अभाव और व्याप्त का अर्थ कर लेंगे व्याप्य। तो साध्य विपर्यय व्याप्त हेतु का अर्थ क्या हो गया साध्य अभाव व्याप्य हेतु विरुद्ध। माने साध्याभाव का व्याप्य जो हेतु होता है वह विरुद्ध हेत्वाभास होता है। यथा शब्दो नित्य कृतकत्वात् ये अनुमान वाक्य है। इसमें अत्र ही नित्यत्वम साध्यम नित्यत्व साध्य है कृतकत्वम हेतु कृतकत्व हेतु है। यद विपर्ययेन च अनित्यत्वेन कृतकत्वम व्याप्तम। यद विपर्ययेन माने जिस साध्याभाव के कारण अनित्यत्वेन कृतकत्वम व्याप्यम अनित्यत्व के साथ कृतकत्व जो है व्याप्त होता है माने कृतकत्व व्याप्य होता है। यतो यद्यत कृतकम तत्तत खलु अनित्यमेव। जो जो कृतक होता है माने कार्य होता है तत्तत खलु अनित्यमेव वह अनित्य होता ही है। अतः साध्य विपर्यय व्याप्तत्वात् इस तरह से साध्याभाव व्याप्य हेतु होने के कारण कृतकत्वम हेतु विरुद्ध कृतकत्व नाम का जो यहाँ हेतु है यह विरुद्ध हेत्वाभास है। अब तीसरा हेत्वाभास कहते हैं सभ्य विचार हेत्वाभास कि साध्य संशय हेतु अनेकांतिक सभ्य विचार इति वा उच्यते। ताकि अनेकांतिक हेत्वाभास अथवा सभ्य विचार हेत्वाभास दोनों एक ही है इसलिए कहा इति वा उच्यते माने या तो सभ्य विचार हेत्वाभास कहते हैं या अनेकांतिक हेत्वाभास कहते हैं। और ये कैसा होता है तो साध्य संशय हेतु जहाँ पर साध्य संशय हेतु हो वहाँ पर अनेकांतुक हेत्वाभास होता है या सभ्य विचार नाम का हेत्वाभास होता है। सद्विविधा या दो प्रकार का होता है साधारण अनेकांतिक असाधारण अनेकांतिकश्चेति। फिर आगे बढ़ते हैं तत्र प्रथम पक्ष सपक्ष विपक्ष वृत्ति ही पक्ष वृत्ति हो सपक्ष वृत्ति हो और विपक्ष वृत्ति हो तो वहाँ पर साधारण अनेकांतिक हेत्वाभास माना जाएगा। यथा शब्दो नित्य प्रमेयत्वात् शब्द नित्य है क्योंकि शब्द में प्रमेयत्व रहता है। यहाँ जो अत्र प्रमेयत्व हेतु यहाँ प्रमेयत्व हेतु के रूप में है। शब्द जो है पक्ष के रूप में है पक्षे शब्दे सपक्षे नित्य व्योमादो और यह प्रमेयत्व जो है सपक्ष जो नित्य व्योम आदि है आकाश आदि है उसमें भी है यह हेतु कौन प्रमेयत्व हेतु। अब विपक्ष जो है विपक्षे च अनित्य घटा दो अब विपक्ष जो अनित्य घटादि है उसमें भी है क्योंकि सर्वस्व प्रमेयत्वात् सब में प्रमेयत्व तो रहता ही है तस्मात् प्रमेयत्वम हेतु साधारण अनेकांतिक। इसलिए प्रमेयत्व हेतु जो है यह साधारण अनेकांतिक हेतु कहलाएगा और ये हेत्वाभास हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जो शब्दों नित्य प्रमेयत्वात् में जो ये प्रमेयत्व तो हेतु दिया गया है ये प्रमेयत्व तो पक्ष में तो रहता ही है और पक्ष के साथ साथ सपक्ष में भी रहता है विपक्ष में भी रहता है। इस तरह से जो हेतु पक्ष सपक्ष विपक्ष वृत्ति हो उसको हम साधारण अनेकांतिक हेतु कहते हैं। तो शब्द पक्ष है उसमें तो रहा और सपक्ष हो गया नित्य व्योम आदि उसमें भी रहा और विपक्ष हो गया अनित्य घट आदि उसमें भी रहा। इस तरह से ये साधारण अनेकांतिक हेत्वाभास हुआ। अब दूसरा कहते हैं असाधारण अनेकांतिक सएव असाधारण अनेकांतिक हेत्वाभास वही है सएव यह सपक्ष विपक्षाभ्याम व्यावृत्त पक्ष एव वर्तते। जो सपक्ष विपक्ष में तो व्यावृत्त हो माने सपक्ष विपक्ष में न रहे पक्ष एव वर्त और पक्ष एव वर्तते और केवल पक्ष में ही हो। यथा भूर नित्या गंधवत्वात् भू जो है पृथ्वी जो है वह नित्य है गंधवत्व होने के कारण अत्र ही गंधवत्वम हेतु गंधवत्व हेतु है। सच सपक्षात, इसका जो सपक्ष है नित्यात व्योम आदि है, माने भू का सपक्ष कौन होगा, नित्य व्योम आदि, उससे भी व्यावृत्त है यह गंधवत्व, क्योंकि व्योम आदि में गंधवत्व नहीं होता। और विपक्ष जो है अनित्य जल आदि, उससे भी यह व्यावृत्त है, क्योंकि अनित्य जल आदि में भी गंधवत्व नहीं रहता है, किंतु पृथ्वी में रहता है। तो गंधवत्व से पृथ्वी मात्र व्यक्तित्वाद, इस तरह से यहाँ जो गंधवत्व हेतु है ये पक्ष में तो है, पक्ष में है, किंतु सपक्ष और विपक्ष से व्यावृत्त है। और इस तरह का जो हेतु होता है वह असाधारण अनैकांतिक हेतु के अंतर्गत आएगा। व्यभिचारस्तु लक्ष्यते, ताकि अब व्यभिचार का लक्षण बताया जाएगा कि संभवत सपक्ष विपक्षस्य हेतु हो सपक्ष वृत्तित्वे सति विपक्षाद व्यावृत्तिरेव नियमो गमकत्वात्, ताकि संभवत सपक्ष विपक्षस्य हेतु हो, माने जहाँ पर हेतु जो है उसमें सपक्ष में भी संभावना हो और विपक्ष में भी संभावना हो हेतु की, वहाँ पर सपक्ष वृत्तित्वे सति, माने सपक्ष में वृत्तित्व होने पर, सपक्ष में विद्यमान होने पर विपक्षात व्यावृत्ति है, वह विपक्ष से व्यावृत्ति होना ही, माने विपक्ष से भेद होना ही जो है एवं नियम, यही नियम होता है गमकत्वात्, माने प्रमाणत्वात्, प्रामाणिक होने से। तस्य च साध्य विपरीतता व्याप्तस्य तन्नियमाभावो व्यभिचार, और ऐसी स्थिति में साध्य विपरीतता व्याप्त जो है उस नियम का जो अभाव है वही यहाँ पर व्यभिचार शब्द से लिया जाएगा। सच द्वेधा संभवती, यह जो व्यभिचार है यह दो प्रकार का होता है, सपक्ष विपक्ष यो वृत्तो, माने सपक्ष में वृत्ति रहने पर, विपक्ष में वृत्ति रहने पर, अथवा ताभ्याम व्यावृत्तो च, उन सबों में अवृत्ति अवृत्ति रहने पर, व्यावृत्ति रहने पर। अब प्रकरण सम नाम का जो हेत्वाभास है उसके बारे में बताते हैं कि यस्य प्रतिपक्ष भूतम हेत्वंतरम विद्यते स प्रकरण समाह, जिसमें प्रतिपक्ष जो है वो हेतु अगर विद्यमान हो, दूसरा हेतु विद्यमान हो प्रतिपक्ष के रूप में, विरोधी के रूप में, वहाँ पर प्रकरण सम नाम का हेत्वाभास माना जाता है। स एष सत प्रतिपक्ष इति च उच्यते, और इसी प्रकरण सम हेत्वाभास को सत प्रतिपक्ष नाम से भी कहा जाता है। तद यथा शब्द अनित्य नित्य धर्म अनुपलब्धे है, इस तरह से कुछ अनुमान किया गया कि शब्द अनित्य है क्योंकि शब्द में नित्य धर्म की अनुपलब्धि है। यहाँ पर जो हेतु दिया गया वो नित्य धर्मानुपलब्धे है, ये हेतु दिया गया। अब देखिए इसका प्रतिपक्ष हेतु अंतर भी आगे है कि शब्दो नित्यो और नित्य धर्मानुपलब्धे है, कि शब्द नित्य है क्योंकि इसमें अनित्य धर्म की अनुपलब्धि है। तो नित्य धर्मानुपलब्धि हेतु से शब्दो नित्य साधन किया गया है, और अनित्य धर्मानुपलब्धि हेतु से शब्द में नित्यत्व साधन किया गया है। यहाँ जो हेत्वंतर है वह प्रतिपक्ष भूत हेत्वंतर विद्यमान है, अनित्य धर्मानुपलब्धि हेत्वंतर, इसलिए यह प्रकरण सम नाम का हेत्वाभास होगा, सत प्रतिपक्ष नाम का हेत्वाभास होगा। अत्र ही साध्य विपरीत साधकम समान बलम अनुमानांतरम प्रतिपक्ष इत्युच्यते, ताकि साध्य के विपरीत साधन करने वाला समान बल बली, माने समान बल वाला जो अनुमानतर होता है, माने हेत्वंतर होता है, वह प्रतिपक्ष इत्युच्यते, वही प्रतिपक्ष कहा जाता है। यह पुनः अतुल्य बलो न स्व प्रतिपक्ष, और जो अतुल्य बल होगा उसको प्रतिपक्ष नहीं कहा जाता है। तो समान बल वाला अगर होना हो हेतु अंतर, तभी वह सत प्रतिपक्ष के अंतर्गत आएगा। आगे कहते हैं कि तथा ही विपरीत साधक अनुमानम त्रिविधम भवति, तो विपरीत साधक अनुमान जो है तीन प्रकार का होता है, उपजीव्यम, उपजीवकम, अनुभयम च, माने उपजीव्य विपरीत साधक, उपजीवक विपरीत साधक, और अनुभयम माने न उभयम, न जो न उपजीव्य हो और न उपजीवक हो, ऐसा जो विपरीत साधक है। इस तरह से तीन प्रकार का जो है ये प्रकरण सम हेत्वाभास होता है। तत्र आद्यम बाधकम बलवत्वात्, उसमें आद्य जो है वह बाधक होता है बलवान होने के कारण, आद्य मतलब उपजीव्य वाला जो विपरीत साधक अनुमान है वह बलवान होने के कारण बाधक होता है साध्य की सिद्धि में। यथा अनित्य परमाणु मूर्तत्वात् घटवत्, परमाणु जो है अनित्य होता है क्योंकि उसमें परमाणु में मूर्तत्व होता है, घटवत् घरे की तरह, इत्यस्य परमाणु साधक अनुमानम नित्यत्वम साधयत अपि, यह जो परमाणु साधक अनुमान है यह नित्यत्व का साधन करते हुए भी न प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष के अंतर्गत नहीं आएगा किंतु बाधकम एवं किंतु यह बाधक ही कहलाएगा, विपरीत साधक अनुमान ही कहलाएगा, क्योंकि उपजीव्यत्वात् उपजीव्य होने के कारण। उपजीव्य और उपजीवक आप समझते हैं कि नहीं, जो उपकारक होता है वह क्या होता है, उपजीव्य होता है, और जो उपकार्य होता है वह उपजीवक होता है। तो कहा कि यहाँ पर जो है उपजीव्यत्व होने के कारण ये बाधक ही होगा, प्रतिपक्ष नहीं होगा। तच्च धर्मी ग्राहकत्वात्, क्योंकि यह जो है धर्मी का ग्राहक है, धर्मी यहाँ पर कौन है, परमाणु है, यह परमाणु का जो है ग्राहक होता है। न ही प्रमाणे न अनुग्रह्यमाने धर्मिनी, कहा कि प्रमाण के रूप में जो अगृह्यमान धर्मी है, अगृह्यमान जो परमाणु है, उस परमाणु में अनित्यत्व अनुमानम इदम संभवति। प्रमाण के प्रमाणेन अगृह्यमाने धर्मिनी परमाणु, प्रमाण के रूप में और अगृह्यमान जो धर्मी परमाणु है उसमें अनित्यत्व का अनुमान जो है संभव नहीं है, आश्रय असिद्ध है, क्योंकि आश्रय ही असिद्ध होगा जब परमाणु ही नहीं रहेगा। आश्रय तो परमाणु है, वही जब नहीं रहेगा तो उसकी तो आश्रय असिद्धि हो जाएगी। अतः अनेन अनुमानेन, इस अनुमान से परमाणु ग्राहकस्य प्रामाण्यम अपि अनुज्ञातम, परमाणु ग्राहक जो प्रामाण्य है वह भी अनुज्ञात होता है, माने समर्थित होता है, अन्यथा अस्य उदय असंभवात, अन्यथा इसका उदय जो है असंभव हो जाएगा। तस्मात् उपजीव्यम बाधकम एव, इसलिए उपजीव्य जो है वह बाधक ही होता है। उपजीवकम तु दुर्बलत्वात् बाध्यम, और उपजीवक जो है दुर्बल होने के कारण बाध्य होता है। अगर परीक्षा में पूछे कि उपजीव्य और उपजीवक में कौन बाध्य बाधक होता है तो यही लिखना है, उपजीव्यम बाधकम उपजीवकम बाध्यम। यथा इदम एव अनित्यत्वानुमानम, जैसे यहाँ पर ही जो है अनित्य परमाणु मूर्तत्वात् घटवत्, इस अनुमान में जो अनित्यत्वानुमान किया गया है वह जो है बाध्य है। तृतीयम तो सत प्रतिपक्षम समबलत्वात्, और तीसरा जो है वह सत प्रतिपक्ष, तीसरा मतलब अनुभयम वाला जो होता है वह सत प्रतिपक्ष होता है, वहीं पर समबल होता है। तात्पर्य ये निकला कि जहाँ उपजीव्य उपजीवक होगा वहाँ समबल नहीं होगा, क्योंकि उपजीव्य ज्यादा बलवान होता है, उपजीवक कम बलवान होता है, तो वह सत प्रतिपक्ष के अंतर्गत नहीं आएगा। जहाँ अनुभय होगा माने उपजीव उपजीवक जहाँ नहीं रहेगा वही जो है समबल कहलाएगा, और समबल कहलाने के लिए वही जो है सत प्रतिपक्ष के अंतर्गत आएगा। इस तरह का से आज का पाठ जो है यहीं पर स्थगित करते हैं।